उपेक्षा लेक्चर नंबर 133 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धे शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं त्रिभुवनतिलकं देवं वंदे त्रिभुवनेन्द्रपरिपूजं वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, जिसमें अभी हम बोधि दुर्लभ भावना को देखते हुए पेज नंबर 13 पर गाथा नंबर 298 को देखेंगे। कल इसकी बात हमने थोड़ी बहुत देखी थी। यहाँ तो कह रहे हैं कि मनुष्यपना जो है वह तो दुर्लभ है ही है, लेकिन देवपना भी जो प्राप्त करता है, और देवपना प्राप्त करने के बाद भी उसके चारित्र को वह नहीं पा सकता है। उसके बारे में हमने कल देखा था कि जो मनुष्य गति का जीव है वह, भाई अभी तो हमने तो मुनि अवस्था की बात देखी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ेगा और ऐसी अवस्था हो जाएगी 11वें गुणस्थान में परिपूर्ण वितरागता उसे प्राप्त हो जाए, और उस 11वें गुणस्थान में जो अंतर्मुहूर्त काल है उसमें जस्ट एंटर हुआ, एक समय में परिपूर्ण वितरागी हुआ, वही उनका मरण हो सकता है। तो देखो, पूर्ण वितराग हुआ जीव, जिसको अति इंद्रिय सुख का वेदन तो बहुत कुछ है, क्यों कोई आकुलता है नहीं ना भाई, ऐसा जीव चौथे गुणस्थान में जाएगा, जहां कोई कषाय चौकड़ी का सद्भाव नहीं है, वहां से हटकर यानी गिरकर तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, ऐसी अवस्था में पहुंचेगा। इसलिए कहते उसे चारित्र नहीं मिलेगा वहां। कैसी विचित्रता है देखो। तो ये हम कल इधर तक ही देखे थे, अभी हम 298 पढ़ेंगे ना।
हाँ, पढ़ना बाकी। अथवा देवः भवति स्फुटम् तत्रापि प्राप्नोति कथमपि सम्यक्त्वम् तत्तपशरणं न लभते देशयमं शीललेशमपि। क्या कहते हैं, कदाचित देव भी हो जाता है और वहां भी कभी कभी किसी को सम्यक्त्व भी हो जाता है। कहते अतः देवम भवति स्फुटम् के मनुष्य तक हमने देखा था, तो मनुष्यायु में क्या किया उसने, मनुष्य भव में शुभ परिणाम किए, उसके फलस्वरूप उसको देव गति भी मिल गई। अब देव में तो अन्य बातें छोड़कर वहां सम्यक्त्व भी कोई प्राप्त करे तो भी, जैसे मनुष्य पर्याय में वो चारित्र धारण कर सकता था, भले दुर्लभ है फिर भी वहां मुनि योग्य वहां उसकी वितरागता हो सकती थी, परंतु देवों में सम्यक तो हो जाए तो भी तपश्चरण वहां नहीं हो सकता। लोग तो यहां उपवास आदि करने को ही तप समझते हैं। जब ऐसा प्रश्न निकलता है कि जितने देवों की सागरों की आयु है उतने हजार वर्ष के बाद उनको भूख लगती है, तब तक तो कुछ नहीं है, वहां तो कोई ऐसे कवलाहार तो होता ही नहीं है, और जब उनके वो इच्छा होती है तो कंठ से अमृत झरता है और उनकी तृप्तता हो जाती है। तो प्रश्न ऐसा, इतना उपवास किया जैसे 33 सागर की आयु वाले ने 33,000 वर्ष तक कुछ नहीं खाया पिया, तो क्या उसको तपश्चरण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेन, क्यों नहीं हुआ? हाँ, वहां का माहौल ही है। आप क्या कहते हैं? देखो, तप किसको कहते हैं? अंतरंग में प्रतपन जो है, विशिष्ट अंतरंग में स्थिरता, उसको तप कहते हैं। और जिसके इतनी स्थिरता है उसके बाह्य में भी ऐसे सहज वैसे वैसे बाह्य तप जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। परंतु बाह्य कोई ऐसा खाया नहीं कुछ और इसलिए उसको तप संज्ञा नहीं प्राप्त होती। देवों में तो हमने देखा अधिक से अधिक कौन सा गुणस्थान प्राप्त हो सकता है? चौथा। तो चौथे के योग्य जितनी वितरागता है उतनी ही होगी, मुनि योग्य वितरागता तो नहीं होगी। वो बाहर से कुछ खाने नहीं खाने से कोई उसका मतलब नहीं है, गुणस्थान वहां चौथा है। देखो, लोकांतिक देव तो वहां ब्रह्मचर्य से रहते हैं और नेक्स्ट भव में मोक्षगामी है जीव, फिर भी यहाँ जो पांचवें गुणस्थान में जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा कही है तो उनके तो कोई ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं कहने में आएगी। जो नाम किसको दिया जाएगा? पांचवें गुणस्थान वर्ती वाले को, क्योंकि वहां कोई उनके ना भावों में कोई कलुषता है और ना ही कोई, यानी द्रव्य और भाव दोनों से वो ब्रह्मचर्य पालते हैं, फिर भी गुणस्थान उनका चौथा है। तो उनको नहीं कहेंगे इनके ब्रह्मचर्य प्रतिमा है करके, क्योंकि प्रतिमा वाला जो व्यवहार होता है वो पांचवें गुणस्थान वर्ती वालों के साथ होता है। तो यही बात बताना चाहते हैं, तत् तपश्चरणम न लभते, वहां सम्यक तो प्राप्त होगा तो भी तपश्चरणे ने जितनी अंतरंग स्थिरता होनी है उतना वहां नहीं होता। देश यमम, जिसको कहते ना देश चारित्र, वो भी नहीं होता है। देश चारित्र किसको कहते हैं? कौन से गुणस्थान वाले को? पांचवें गुणस्थान वाले को। मुनियों के कहते हैं सकल चारित्र है, छठे सातवें, और पांचवें गुणस्थान वाले को देश चारित्र है। यम यानी जो नियम है, जो व्रत है, देश यम यानी देश व्रत, देश व्रत भी नहीं होते। शील लेशम अपि, और वहां शील व्रत यानी ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तो हो सकता है, ब्रह्मचर्य व्रत अभी जो मैंने बात की प्रतिमा वाली, वो नहीं होगा वहां पर। देखो यहाँ अर्थ देखते हैं, अथवा मनुष्यपनामा कदाचित शुभ परिणामों थी देवपण था। मनुष्य पर्याय मिलती है तो मनुष्य पर्याय तो पुण्य और शुभ परिणाम के पीछे ही गंवाता है। सम्यक दृष्टि के मुनियों के भी पुण्य परिणाम तो हो गए, परंतु वहां तो वीतरागता की मुख्यता है। परंतु जो वीतरागता की या आत्मा की कोई बातें, तत्वज्ञान के अभ्यास में कोई योगदान ही नहीं उसका, उसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, बस बाह्य में व्रत करे, तो उसको देव की पर्याय मिल सकती है। परंतु देव की पर्याय मिलने से उसको क्या लाभ हुआ? मनुष्य पर्याय छोड़कर जो देव में गया है उससे उसका कल्याण क्या हुआ? जैसे मनुष्य में सम्यक तो हो सकता था, वहां भी हो सकता है। तो कोई कहेगा हाँ चलो अच्छा रहकर हम सम्यक तो प्राप्त करेंगे, परंतु मनुष्यों में रहते हुए चारित्र प्राप्त करना उसके लिए संभव था। वैसे तो देवों में अभी है ही नहीं, उनके तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं है, यानी उतनी भी आत्मस्थिरता नहीं हो सकती। तो कहते हैं मनुष्यपनामा कदाचित शुभ भावो थी, शुभ परिणामो थी देव पण थाय। पण थाय का ना, मनुष्य में से मरकर कौन कौन से गतियों में जीव जा सकता है? मनुष्य मरकर कहां कहां पैदा हो सकता है मालूम है आपको? हाँ, देव, नारकी, तिर्यंच और दोबारा मनुष्य, तो चारों गति में जा सकते हैं। वैसे तिर्यंच मरकर कहाँ जा सकता है? हाँ बोलो जयवे, तिर्यंच मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है?
कहाँ कहाँ का मतलब कौन कौन से गति में जा सकता है?
मनुष्य नारके दो ही गति में देवलोक में नहीं जाते। अच्छा आपको नहीं मालूम, हाँ मिलिंद मैं बता, हाँ तिर्यंच भी चारों गति में जाएंगे, परंतु तिर्यंच कहने से देव और नरक में जाने वाले तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही जाएंगे। तिर्यंच तो एक इंद्रिय से सब होते हैं, पंचेंद्रिय देव में जाएंगे और नरक में, तो कौन से पंचेंद्रिय जाएंगे, संगी के असंगी दोनों। संगी भी मरकर देव में जा सकता है, हाँ तिर्यंच मर के, तिर्यंच की बात नहीं, तिर्यंच मर के देव या नारकी होने की बात चल रही। तो संगी पंचेंद्रिय मरकर देव में जाएगा कि असंगी मरकर जाएगा? संगी जाएगा। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई?
अभी अरविंद
बोलो, अरविंद भाई बोलो। देखो ये असंगी मरकर कहाँ जा सकते हैं? भवनवासी और व्यंतर, इन दो में जा सकते हैं। ना वो ज्योतिष में जाएंगे, ना सौधर्म ईशान वगैरह ऊपर के कहीं नहीं जाएंगे, परंतु वहां जा सकते हैं। कहाँ? भवनवासी और व्यंतर, ज्योतिष में नहीं जाते हैं। हाँ। और नरक में जाएंगे तो पहले नरक में जा सकते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी ऊपर जाने वाले, तो ये नेत्रियंच जो है संगी पंचेंद्रिय जाएंगे, तो संगी पंचेंद्रिय मरकर देवों में कहां तक जाते हैं? तिर्यंच की बात है। तिर्यंच कौन से देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं मालूम है मिलिंद भाई? नहीं मालूम, बोलो मंदा भी याद नहीं, अरविंद भाई को याद है। 16वें स्वर्ग तक, और वो भी कौन से? पंचम गुणस्थान वर्ती जो तिर्यंच है वो मरकर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। ये कोई मनुष्यों की वो वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, तिर्यंच भी जा सकते हैं। तो यहां बात है, देव भी हुआ, सम्यक तो भी प्राप्त हुआ, तो भी वहां चतुर्थ गुणस्थान के ऊपर उसका पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो ये हम अर्थ पढ़ रहे थे, असंगी मनुष्य में होता ही नहीं, मनुष्य सभी संगी ही है,
असंगी होता ही नहीं।
हाँ देव में जाने पर भी सम्यक तो हो सकता है।
ध्यान रखना अरविंद भाई, आपने पूछा ना कि असंगी मनुष्य भी कहाँ जाएगा, तो पहले में पहले एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय संगी में पंचेंद्रिय असंगी और संगी, ये वैरायटी सिर्फ तिर्यंच गति में ही होगी। दूसरा नियम ऐसा बिल्कुल ध्यान रखना कि जो क्या बात कह रहे हम कि नारकी जीव है या तुम्हारे क्या नाम है देव गति का जीव है या मनुष्य गति का जीव है, वह नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होगा। अभी आपके जो मन में ऐसे बताने की बात थी कि असंगी का क्या होगा,
नहीं नहीं अपर्याप्त
का क्या होगा, तो अपर्याप्त भी संगी पंचेंद्रिय का ही भेद है।
हाँ, परंतु वो मरकर देव में नहीं जा सकते। हाँ, वो अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त है, तो लब्धि अपर्याप्त मरकर मनुष्य या तिर्यंच में ही जाएंगे, उनको ना नारक पर्याय मिलेगी ना देव पर्याय मिलेगी।
ऐसे क्या होता है, देखो ये जो कर्णानियोग के कोई विशिष्ट सिद्धांत है, वो सिद्धांतों से अपनी दृष्टि इतनी साफ हो जाती है कि हमारे मन में जो कोई ऐसे ऐसे कोई भ्रामक कल्पनाएं घूमती फिरती है। अभी कर्म भूमि में यहाँ अभी पंचम काल में कोई भी जीव मनुष्य पर्याय में आएगा तो सम्यक्त्व के साथ आएगा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि जन्मेगा मनुष्य में से मनुष्य, लेकिन मनुष्य विद सम्यक्त्व, तो कई ऐसा लोगों की मान्यता है ना कि वो सम्यक दृष्टि था, अभी उसका ये कोई चेला है या उसका कोई बच्चा है,
अवतार है,
अवतार है, वो सम्यक के साथ जन्मा है, ऐसी जो मान्यता है ना वो बिल्कुल तद्दन भूल भरी है। यानी भूल भरी क्यों? अज्ञानता से मोह के वश ऐसी मान्यता होती है। लेकिन हम जिसको आगम के सिद्धांतों पर उनका हम निकष लगाते हैं, क्या बोलते हैं आप, तरासी ने लई है तो खबर पड़े कि आ बात हो ही सके नहीं। यानी हमें अपनी दृष्टि की क्लैरिटी यानी अपनी मान्यता की क्लैरिटी के लिए ये अभ्यास करना है। अभी ये ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है, मानने दो, पर अभी ये क्या कोई मानता है बताना इसलिए है कि भाई ऐसी मान्यता अगर हमारी हो तो हम छोड़ दें, बस दूसरा कुछ, दूसरे को दोष देना नहीं है ना दूसरे को कुछ नीचा दिखाना है। मैं तो कहता हूँ कि करना नियोग तो हमें बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना भ्रामक कल्पना उनसे एकदम छुट्टी दिलाता है। बहुत एक एक अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, इसलिए अभी जैसा बताया ना अपर्याप्त जीव कहाँ जाएगा, मनुष्य अपर्याप्त, तो या तो मनुष्य में आवे या तो 3 इंच में जावे। हाँ अब आगे कुछ बताना,
अर्थ अर्थ पढ़ रहे थे हम। अथवा मनुष्यपनामा कदाचित शुभ परिणामों थी देव पण थाय अने कदाचित त्या सम्यक तो पण पामे। अभी आपने अभी तेजल ने पूछा ना क्या देव में जाने के बाद भी सम्यक तो हो सकता है, हाँ चारों ही गति में सम्यक तो की प्राप्ति हो सकती, जन्म से नहीं पर अंतर्मुहूर्त में हो सकता है। एक अंतर्मुहूर्त में जीव पर्याप्त होता है वहां पर, मिथ्या दृष्टि कोई जन्मा है देव में और अंतर्मुहूर्त तक उसके पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन ये भी बात है कि सम्यक्त्व के साथ भी देव गति में जन्मता है,
नहीं उनका प्रश्न ऐसा था।
नहीं नहीं ये देखो मैं कह रहा हूँ वही बात है,
यहाँ कोई सम्यक तो होगा तो सम्यक तो के साथ वहाँ जन्म ले सकता है, कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि है और सम्यक तो के साथ ही मर गया है तो भी देव में सम्यक तो के साथ ही उत्पन्न होगा, यानी उसका सम्यक तो कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ पर हाँ। नारकी में जाने के लिए कंडीशन आवश्यक है।
आपका कुछ प्रश्न है? हाँ आपका प्रश्न ऐसा है जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है वह नियम से देवगति में जाएगा क्या, ऐसा आपका प्रश्न है। ऐसी बात होती है सम्यक्त्व होने के पहले अगर किसी जीव ने अन्य गति बांधी है,
गति ने आयु
अन्य आयु सॉरी अन्य आयु बांधी है तो वो उस आयु में जाएगा। जैसे श्रेणिक राजा नरक में गए ना, वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे लेकिन वो सम्यक तो होने के बाद आयु बांधे तो नियम से देव का ही आयु बांधेगा और वो सम्यक तो के साथ यहाँ से सम्यक दृष्टि कौन कौन से गति से सम्यक दृष्टि जीव देव गति में जाएंगे सम्यक तो के साथ, क्योंकि हमने देखा चारों ही गति में चारों ही गति में सम्यक होते हैं तो कौन कौन से गति से सम्यक तो के साथ देव गति में जीव जाएगा अलग अलग बोलो। आप बताना चाहते हैं क्या?
नहीं 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 इनका प्रश्न ऐसा है।
हाँ। नहीं, नहीं नहीं बोलो बोलो प्रश्न बोलो।
प्रश्न ऐसा है जैसे मनुष्य समय दृष्टि देव में जाएंगे,
एक एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से मैं दोहराऊंगा कि चारों ही गति में सम्यक्त्व की प्राप्ति है और सम्यक भी होते हैं तो सम्यक्त्व के साथ मरकर देव गति में कौन कौन से गति से जीव जाएंगे अभी बताएंगे आप चारों गति। अच्छा
तो देव में से फिर दोबारा देव में जाएंगे?
नहीं मालूम नहीं, कोई बात नहीं,
नहीं मालूम नहीं।
पापा आप बताने। हाँ और अच्छा यानी केवल आपका कहना है सुनो 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 केवल आपका कहना है सम्यक्त्व के साथ मनुष्य गति का जीव ही देव मनुष्य पर्याय का जीव ही देव में जाएगा, अन्य कोई नहीं जाएगा, ऐसा आपका मानना है कहना है।
मिलिंद भाई को उत्तर देना।
अरे मिलिंद को अभी बताया था ना पंचम गुण स्थानवर्ती। देखो और एक नया कायदा हो, जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव कोई भी गति का होगा, कौन से गति का होगा? हाँ वो नियम से स्वर्ग में सम्यक्तों के साथ टिका रहेगा, हाँ तो देव में ही जाएगा। हाँ चौथे भले जाने दो,
देव में चौथा ही गुणस्थान होगा सम्यक्तों के साथ,
ये खासियत है। अभी क्या देखो, नरक में से कोई भी डायरेक्ट सम्यक दृष्टि क्यों न हो, देव में नहीं जाएगा, देव गति का जो सम्यक्तों के साथ फिर दोबारा देव में नहीं जाएगा। सम्यक्तों के साथ क्यों, देव में से देव में नहीं जाएगा, नारकी में से नारकी में नहीं जाएगा, वो दोनों हट गए। और नारकी कैसा है, मरकर नारकी नहीं होगा और मरकर देव नहीं होगा, वैसा देव वाला जो जीव है वो मरकर देव नहीं होगा नारकी नहीं होगा। अब रह गए दो, देव गति का सम्यक दृष्टि सॉरी मनुष्य पर्याय का सम्यक दृष्टि और तीरंच, ये दोनों जीव सम्यक्त्व के साथ मरकर स्वर्ग में यानी देव में जाएंगे। बात क्लियर हो गई, मजा आ रहा है ना अभी?
अभी ऐसा है ना आप,
हाँ सम्यक्त्व के साथ मरेगा तो सम्यक्त्व के साथ जन्मेगा।
अभी ऐसा है ना, मनुष्य जो सम्यक दृष्टि है तो जिस आयु का बंद किया है वहां चला जाता है। हमने देखा ना श्रेणी नरक में गया है तो उसने पहले नरक आयु बांधी थी, वो घट गई, वो तो बात अलग।
देखो अभी यहाँ आप एक बता रही थी, भूल गई है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने ऐसा बताया जो कोई सम्यक्त्व के साथ नरक में जाने वाला मनुष्य गति का जीव होगा तो वह नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि
वही उसी बात पर आना है।
हाँ,
चारों गति में जा सकता है परंतु उसके लिए एक कंडीशन है, जिसने पहले तिर्यंचायु बांधी है और बाद में सम्यक तो प्राप्त करता है, और यदि सम्यक तो बना रहे और तिर्यंच में जाना है तो उसको क्षायिक सम्यक भी होना आवश्यक है। उपशम सम्यक तो में तो कोई मर के कहीं जाता ही नहीं, मरता ही नहीं। वेदक सम्यक्त्व के साथ मरकर देव में तो जा सकता है मनुष्य सम्यक्त्व के साथ में, परंतु तिर्यंच में एक शायिक होने वाला ऐसा उसका जिसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं कि अभी उसके एक अंतर्मूर्त बाकी है या शायिक पूरा किया है, ऐसा ही जीव जा सकता है सम्यक्त्व के साथ। मनुष्य से तिर्यंच, मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से नरक में जाना है तो क्षायिक समय दृष्टि ही होना आवश्यक है। अब कोई यहाँ समय दृष्टि है और अभी विदेह क्षेत्र में जाएगा सम्यक्त्व के साथ, अरविंद भाई नहीं कहते, एक देव का भोग करके ही वहां जा सकता है। सब विदेह क्षेत्र में जन्मना चाहते हैं ना? नहीं आप नहीं चाहते तो मिथ्या दृष्टि में जाएंगे, मिथ्या तो अवस्था में चले जाएंगे। हाँ तिर्यंचो में एक शायिक समय दृष्टि कौन होते हैं जो मनुष्य में एक शायिक होकर तिर्यंच में गए हैं? शायिक हो तो बना ही रहेगा ना, और वो भोग भूमि का तिर्यंच होगा, भोग भूमि का तिर्यंच होगा और ऐसे असंख्यात शायिक समय दृष्टि तिर्यंच है, क्योंकि भोग भूमि की आयु एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य है ना, तीन अलग अलग है ना, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट।
देखो कल ही बात आपको समझाई थी, आप भूल गए हैं कि क्षायिक सम्यक्त्व क्या बताया, नरक में भी पहले नरक में असंख्यात है, अभी आपको बताया तीरंज में भी असंख्यात है, देव में वहां भी असंख्यात है, हाँ साहब मनुष्य में संख्यात है, ये रियलिटी है, दुर्लभता। हाँ अब आगे बढ़ेंगे हम।
हाँ देखो पहले जब यशोधर महाराज पर उपसर्ग किया उस समय सातवें नरक की आयु बंधी, तब तो मिथ्या दृष्टि था ना, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया। सम्यक तो के परिणामों के कारण वो जो अधिक बांधी हुई आयु है वो घट गई, स्थिति घट गई, 84,000 वर्ष रहेगी। सम्यक दृष्टि के लिए प्रथम नरक की मिनिमम आयु 84,000 वर्ष होती है, मिथ्या दृष्टि के लिए 10,000 वर्ष हो सकती है। तो ये मिनिमम नरक की आयु उनके लिए जो है 84,000 वर्ष रहेगी। तो फिर वो क्षायिक तो प्राप्त किया उन्होंने, तो क्षायिक सम्यक तो के साथ पहले नरक में आए हैं। अब क्षायिक है तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी शुरू किया था महावीर तीर्थ, महावीर भगवान के समोचरण में, वही उनके पादमूल में। अब ये तीर्थंकर प्रकृति बांध रही है और आगामी 24 के पहले तीर्थंकर हो गए वे, यानी 21,000 फिर 21 और 21, पांचवा छठा फिर छठा और पांचवा उल्टा, 84,000 वर्ष पार करके वो तो प्रथम तीर्थंकर हो गए।
उसको
अन्य तीन में जाने के लिए सम्यक्त के साथ दोबारा मनुष्य, सम्यक्त के साथ तिर्यंच, या सम्यक्त के साथ नरक में जन्मने वाला जीव क्षायिक ही होना चाहिए। पंचम काल में नहीं होगा तो आप आगे की बात डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ के आगे ही नेक्स्ट भव में कोई मोक्ष जाने वाला कहते हैं तो उसके बीच में एक देव का भव होगा।
अभी या बोलो बोलो, नहीं तो मैं कुछ दूसरा टॉपिक बता।
ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तो समय दृष्टि है, हो सकता है अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में चला गया, फिर वहाँ चला गया विदेह में, वहाँ जाके फिर यथा युग काल में फिर समय तो प्राप्त किया, उसी भाव में मोक्ष किया, ऐसा भी हो सकता है किसी का, सभी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। परंतु वो कर्णानियोग के नियम के अनुसार हो गए। हर एक जीव के जो पर्याय का क्रम है वो अलग अलग होता है, कौन से जीव के कब क्या परिणाम होते हैं वो तो निश्चित है, परंतु वो कर्णानियोग के नियम के बाह्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें अपवाद नहीं होगे। नहीं, देव में जाने वाला है ना, वेदक सम्यक्त के साथ जन्मा है वहां पर, तो वेदक सम्यक्त में से गिर भी सकता है। सम्यक तो हुआ है, देव है कोई, समय दृष्टि है, तो उसका सम्यक तो छूट सकता है, जैसे यहाँ मनुष्य में भी छूट सकता है। नरक में जो क्षायिक के साथ गया उसका नहीं छूटेगा,
कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव दोबारा मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, अन्य में आ सकते।
अब नरक में जो बाकी सम्यक दृष्टि वहाँ पर है वो वहाँ जाने के बाद उत्पन्न हुए है, कोई औपशमिक हो गए या कोई वेदक सम्यक, यानी क्षयोपशमिक हो गए, वेदक कहो या क्षयोपशमिक कहो एक ही बात।
अभी मैं एक बात यह बता रहा था, अभी आपने वो श्रेणिक राजा की बात सुनी ना, उनकी कहानी, उसमें ऐसा बताया कि उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम हजारों जीवों को मारो, मारने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, उसके सातवें नरक नहीं होगा, सुनना हो जरा शांति से। लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र की विराधना करने वाला जीव सातवें नरक में जाएगा। सुनो सुनो, अभी मुझे पूरा तो बोलने दो। हमें ये देखना है कि वह चतुर्थ गुणस्थान, चतुर्थ काल का जीव था, चतुर्थ काल में ऐसे जीव सातवें में जाएंगे। ये पंचम काल में यहाँ भरत भूमि का कोई जीव, जैसा कोई हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुत क्रूर है, लाइक हिटलर, उन्होंने कितने जीवों को मारा, जलाया, जो कुछ किया, लेकिन वो सातवें नरक में नहीं जाएंगे। यानी खरे देवगुरु शास्त्र की विराधना करना कितना महाभयंकर पाप है कि जो 33 सागर वर्ष तक तुमको रुकड़ाएगा,
यानी उसमें वो सहनन वाला भी नियम लागू होता है।
नहीं नहीं, हाँ। एक कंपैरेटिव कंपैरिजन है
आप परिणामों की, यानी उत्कृष्ट संकलेश किसके होता है ये बात बता रहे।
पार्डन, सच्चे सच्चे देवगुरु, खरे देवगुरु शास्त्र, उनकी विराधना करना यानी उनका अपमान करना, उनका नॉट इंसल्ट मतलब उनके विरुद्ध कुछ भी कार्य करना। आपका कहना ऐसा है कि हाँ, उन्होंने क्या क्या खाली सर्प डाला ना सर, सुनो सुनो, सुनो। इतनी विराधना की ना उनकी। तो उनको हाँ, लेकिन उन्होंने कैसे परिणाम किए थे। मैं ऐसा इस मुनि को सबक सिखाऊंगा कि इसके आगे कोई मुनि न बन पाए, यानी ऐसा उनका बहुत तीव्र विरोध था। अभी जो आप कह रहे हैं कि जैनियों में से बहुत सारे जैन मिथ्यात्वी, वो भी तो था, बहुत सारे जैन हाँ वो विराधना करते तो यथा योग्य फल उन्हें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा।
इसे कहें सर्वज्ञ किसने देखा है, होता ही नहीं है, ये क्या है, ऐसा ही है ना, यानी वो अपना ही बुरा कर रहा है, किसी अन्य देव का तो उसने बुरा किया इसलिए उसको फल मिला, इसे वो तो उनकी कही हुई बातें नहीं मानता है तो उसका अपना बुरा होता है उसमें।
नहीं बुरा है ना, वो अनंत काल तक संसार में रखेगा ना भाई, वो क्या अच्छा थोड़ी है। अरे यहाँ जहाँ जन्म जरा मृत्यु ये सबको रोग कहा है, इस रोग से ये जीव आज तक छुटा नहीं है अनादि काल से, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा ही है ना एक प्रकार की। हम हाँ वो टिकट वाला वो इसीलिए
सभी सातवें नरक में जाने वाले ऐसा नहीं लेना, जैसे मत्स्य जाते हैं उनको क्या पता देवगुरु शास्त्र की विराधना क्या होती है, क्या ये नहीं, वो यथा योग्य अर्थ लेना उसका जहाँ जो पॉसिबल।
हाँ आगे पढ़ेंगे आप।
हाँ
दो लाइन,
ये हमने आधा ही पढ़ा था अर्थ, 298 का अर्थ पढ़ रहे। अथवा मनुष्य पनामा कदाचित शुभ परिणामो थी देव पण थाय, अने कदाचित त्या सम्यक्त्व पण पामे, देव में जाने के बाद वहां सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है तो प्राप्त भी करे, तो त्या तपश्चरण एटले चारित्र पामतो नथी, जो चारित्र की बात कल की थी ना, मुनि योग्य चारित्र को ही चारित्र नाम दिया है, चौथे वाले को सम्यक चारित्र है परंतु उसको वो चारित्र ऐसा नहीं कहने में आता, सकल चारित्र को ही यहाँ चारित्र कहा है। देश व्रत एटले श्रावक व्रत यानी पंचम गुण स्थान व्रती, तथा शीलव्रत एटले ब्रह्मचर्य, अथवा सप्तशील नो लवलेश पण पामतो नथी, ये जो सातवीं प्रतिमा है ना ब्रह्मचर्य की, तो उसको नहीं होगी भले वहां ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। देखो ग्रहवेकों में तो सभी इंद्र होते हैं, सभी पुरुष ही होते हैं, वहां कोई महिला ही नहीं होती, तो ब्रह्मचर्य से ही रहते हैं ना उनके, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं, ऐसे कोई भाव भी उत्पन्न नहीं होते, नवग्रहवेक नव अनुदेश अनुत्तर ये सब ऐसे ही है, और नीचे वालों में भी ये जो लोकांतिक है वो सब ब्रह्मचर्य से रहने वाले हैं और अगले भव में मुख जाने वाले जीव हैं, फिर भी उनको ये ब्रह्मचर्य व्रत नहीं कहेंगे, उनको जो पांचवें गुणस्थान में सातवीं प्रतिमा है वो नहीं कहलाएंगे।
देखो अभी नीचे वो अर्थ जो दिया है वो तीन लाइन छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य थई ने शुभ परिणाम करिया ने अनंतवार देव थियो, ते देवलोक मां कदाच सम्यक दर्शन पामे, पन त्या चारित्र दशा होती नथी। देवों ने व्रतादि होता नथी, तो व्रत कौन से गति के जीवों को होगा, व्रत कौन से गति के जीवों को होगा? दिव्याबेन, हाँ अच्छा, आप क्या कहते हैं? तीर इंच और मनुष्य मिली भाई, आप सबका कह रहे हैं तीर इंच और मनुष्य। अरविंद भाई अभी जवाब देंगे हमको। बराबर, देखो पहले में पहले एक नक्की करो, व्रत किसको कहना, उसको ही व्रत कहते हैं, संयम। बाकी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव संयमा संयमी है। तो आपने बताया दिव्या बहन के मनुष्य गति का ही जो जीव होगा उसको व्रत होगा। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ते देवलोकमा कदाच सम्यक दर्शन पामे पन त्या चारित्र दशा नथी होती, देवो ने व्रतादि होता नथी। तो देव अधिक से अधिक ऊपर के कौन से गुणस्थान में जाते हैं हमने देखा, हाँ चौथे गुणस्थान तक जाता है, बहुत अच्छा। तो चौथे गुणस्थान में जाने वाला जीव भी अव्रती कहलाता है, हाँ बहन। और हमने जरा सा ये वो फला उपवास किया या फला हमने ये नियम लिया, रात को नहीं खाएंगे, फला फला भोजन नहीं करेंगे, कंदमूल आदि नहीं खाएंगे, तो हम तो स्वयं को एकदम ऐसा मानते हैं कि वाह मेरे जैसा व्रती कोई नहीं। अरे भैया यह तो बता रहे व्रत तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीवों के होते हैं और हमें कुछ पता नहीं है और हम स्वयं को एकदम व्रती मानते हैं। हाँ यहाँ तो कहते हैं कि जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है उसको भी व्रत नहीं होते, तो मनुष्य में भी सभी गति में चौथा गुणस्थान होगा उनको भी व्रत नहीं होंगे। तो मिथ्यात्वी के कितने होंगे, ख्याल में है ना? तो यहाँ तो कह रहे देवों ने व्रतादि होता न थी। इंद्र इंद्राणी सम्यक दृष्टि एक अवतारी छे, यानी एक अवतार यानी अगले अगले जन्म में वे मोक्ष नियम से जाएंगे। कौन? इंद्र और इंद्राणी देव। हाँ जी हाँ, आपका पूछना है लोकांतिक देव भी जाते हैं ना? हाँ लोकांतिक जो है ब्रह्मचर्य वाले जो
वो लोकांतिक में सभी
जाएंगे। ते वो भगवान ना जन्म वगैरह प्रसंगे आवीने भक्ति करे छे। कौन? इंद्र इंद्राणी, उनको भी शुभ भाव है।
ये सभी इंद्र इंद्राणी नहीं लेने हो,
पहले दूसरे से
अभी दक्षिण के सारे इंद्र इंद्राणी सौधर्म, यानी जिसका नाम हम पहले लेते हैं सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र, दक्षिण के तो सारे नियम से एक अवतारी होते, पहले तीसरे पांचवे ऐसे उनके जो इंद्र है, उत्तर का नियम नहीं है, दक्षिण के नियम है।
अभी यहाँ पर दो बातें आ गई ना कि एकावतारी छे उसका इन्होंने जवाब दिया, और भक्ति करने के लिए आते वो सभी आएंगे। तेमने आत्मानु भान होई छे, क्यों ये सभी आएंगे कैसा हम नक्की करते हैं? सौ इंद्र होते हैं ना, तो सौ में तो उनका नंबर लगेगा कि नहीं? उसका भी नियम है वो कि कौन से कितने कितने इंद्र होते हैं, कितने प्रति इंद्र होते हैं वगैरह वगैरह सब ऐसी बातें हैं। अभी मनुष्य गति का भी जो राजेंद्र होगा या चक्रवर्ती होगा उसको भी इंद्र कहेंगे, ये सिंह पर्याय का जीव है उसको भी कहेंगे वगैरह वगैरह, तो बाद में उसकी बात करेंगे। अभी तो तेओ भगवान ना जन्म प्रसंगे वगैरह प्रसंगे आवीने भक्ति करे छे, तेमने आत्मानु भान होई छे पन त्या चारित्र दशा होती नथी। लोकांतिक दीवो सम्यक दृष्टि होई छे, ब्रह्मचारी ज होई छे, पन त्या व्रत रूप ब्रह्मचर्य होतु नथी। देश व्रत यानी पार्शल, श्रावक व्रत यानी उसी का अर्थ देश और श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों के जो अनुव्रत है उसकी बात है, तथा शील व्रत एवा पंचम गुणस्थान ने योग्य संयम ત્યાં હોતો નથી એટલે ક્યાં દેવો મે નહીં હોતા હૈ જૈસે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી જીવો કે દેશ સંયમ હૈ યા અનુવ્રત હૈ દેશવ્રત હૈ શીલવ્રત હૈ દેખો પાંચવા ગુણસ્થાન વર્તી હૈ ને તો ઉસકે તો સાતવી પ્રતિમા અભી બતાયે આપકી બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા હૈ વો જૈસી હોગી વો કેવલ બાહ્ય કી પ્રતિમા કી મત દેખના ઉસકે સાથ સાથ જો અંતરંગ મેં ચૌથે કી અપેક્ષા સે ઉગ્ર સ્થિરતા હૈ ચૌથે કી અપેક્ષા અધિક સ્થિરતા હૈ ઓર ઉસ સ્થિરતા કે સાથ ઇસ જીવ કે જબ વો અપને અંતરંગ સ્વરૂપ સે બહાર નિકલેગા તબ ઉસકો એસે પરિણામ હોંગે કૈસે શુભ પરિણામ બ્રહ્મચર્ય આદિ પાલને કે તો યે બાત સ્વરૂપ મેં સ્થિરતા ભી હોની હી ચાહીએ ઓર જૈસી જૈસી પ્રતિમા ધારણ કર રહા હૈ ઉસ યોગ્ય ઉસકે શુભ ભાવ ભી સાથ મેં હોંગે તો એસે પરિણામ ક્યાં હોતા નથી એટલે દેવોમાં ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી જીવોમાં હોતા નથી અભી દેખો માટે રત્નત્રયની મહા દુર્લભતા છે રત્નત્રય મનુષ્યપણામાં જ હોય છે યે રત્નત્રય કી બાત યાની ક્યાં બતા રહે ચોથે ગુણસ્થાન વર્તી વાલે કી નહીં હૈ સાતવે ગુણસ્થાન વાલે કે જીવો કે જો કોઈ હૈ તો રત્નત્રય મનુષ્યપણામાં જ હોય છે લખ્યું ને ચારિત્ર દશા માટે મનુષ્યપણું પામીને રત્નત્રયની આરાધના કરવાનો ઉપદેશ છે કહેતે હૈ આત્માના ભાનપૂર્વક જ્ઞાની જીવ વસ્તુ સ્વરૂપ અનુસાર બાર વૈરાગ્ય ભાવના ભાવે છે તેમાં રાગ તૂટીને જ્ઞાનની એકાગ્રતા વધતી જાય છે તેનું નામ ધર્મ અને સંવર છે દેખો યા દોનો બાતે બતાવી ને રાગ તૂટીને યાને ઉસકે જો પહેલે જો તીવ્ર રાગ હોતા થા વો ઓછા ઓછા કમ કમ હો રહા હૈ પહેલે પાપ ભાવ હોતા થા વો ભી કમ કમ હોકા શુભ ભાવ બઢતે જાયેગા જૈસે ગુણસ્થાન ઉપર ઉપર કા જાયેગા દેખો દેખો જો ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી જીવ હૈ ને ભાઈ ઉસ જીવ કે દૂસરો કી હિંસા મેં કરું એસા કતઈ ભાવ નહીં હોગા ફિર ભી વો ના કે ત્રસ જીવો કી હિંસા સે વિશેષ રૂપ સે બચતા હૈ और ना एकेंद्रीय मतलब स्थावर जीवों के हिंसा से बचता है उसके शुभ भाव है जो भाव आता है उस भाव का यानी शुभ भावों का ज्ञाता है लेकिन ऐसे परिणामों से वो बचता नहीं है पंचेंद्रियों के विषयों में भी अटकता है लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती जीव उसके क्या होगा कि वह त्रस जीवों की हिंसा करेगा ही नहीं उससे होगी ही नहीं और स्थावर जीवों की हिंसा से बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता है भाव नहीं है मारने की लेकिन हो जाता है उससे भी अच्छे परिणाम है ना मंद उसके परिणाम है और उससे भी अधिक मंदतर किसमें है छठे सातवें गुणस्थान ना वे त्रस जीवों की हिंसा करते हैं और ना स्थावर जीवों की हिंसा करते उनसे वो परिपूर्णतः बचते हैं और वैसे बचने का शुभ परिणाम उनके सहज रूप से चलता है लाना नहीं पड़ता है ख्याल में तो यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जीव जाएगा वैसे वैसे उसके शुभ भाव भी अच्छे तरीके मतलब उच्च दर्जा के होंगे यानी शुभ शुभतर शुभतम इस तरह से તો ક્યાં કહા દેખો તેમાં રાગ તૂટીને જ્ઞાનની એકાગ્રતા વધતી જાય છે તો જ્ઞાનની એકાગ્રતા કોની સાથે વધશે રાગ સાથે ને હે રાગ વિના પોતાનો જે સ્વભાવ છે જ્ઞાન સ્વભાવ એની સાથે અને તેનું નામ ધર્મ છે અને તેનું તેને જ સંવર કહે છે અહીં અગિયારમી બોધિ દુર્લભ ભાવનાનું વર્ણન ચાલે છે ચિદાનંદ આત્માના શ્રદ્ધા જ્ઞાનને રમણતા તે આનંદકાળમાં જીવને દુર્લભ છે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલું યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપ શું છે તેનું શ્રવણ પણ અનંતકાળે મળવું મોંઘું છે ને શ્રવણ પછી પણ અંતરમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર થવા તે તો પરમ દુર્લભ છે सम्यक दर्शन पछी पन चारित्रणी दुर्लभता छे। सम्यक दर्शन तो चारे गति में थाय छे, पन छठा सातमा गुणस्थाने झूलती वितरागी चारित्र दशा तो मनुष्य गति में ज थाय छे, माटे तेनी दुर्लभता छे एम वर्णवे छे। आगळ कहे छे के मनुष्य गति में ज तपश्चरण आदिक छे, एवो नियम छे। ये तो बात हम पहले सोचकर यहाँ तक आए ना, अब आगे बोलो जी।
देखो हम मनुष्य है, अत्यंत दुर्लभ ऐसा मनुष्य भाव मिला है, और यहीं पर ये सम्यक तो तपश्चरण, सम्यक तो कहीं पर भी होगा, तपश्चरण की मुख्यता तो यहीं पर होती है, तो उसका उपदेश देने के हेतु से ये बात पर फिर दोबारा मनुष्य की बात यहाँ ली है कि देवो में सम्यक तो हो सकता है परंतु तपश्चरण नहीं हो सकता। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। मनु जगतौ अपि तपः मनु जगतौ महाव्रतम सकलम मनु जगतौ ध्यानम मनु जगतौ अपि निर्वाणम। ये अपि के लिए दोनों ही ऊपर और नीचे जो एक और दो लिखा है आंकड़ा, तो नीचे कहते हैं अपि शब्द निश्चयार्थ माटे छे। देखो अपि का अर्थ होता है वहाँ भी, परंतु यहाँ एव यानी ही के अर्थ में लेना है, यानी मनुष्य गति में ही तप होता है, मनुष्य गति में ही सकल व्रत यानी महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में ही ध्यान होते हैं, और मनुष्य गति से ही निर्वाण होता है, मनुष्य गति वाले जीवों का ही निर्वाण होता है। यानी ये सभी दुर्लभ में दुर्लभ जो बातें हैं वो मनुष्य गति में ही हो सकती है। ये बात यहाँ बता के मनुष्यों को प्रेरणा देने का यह प्रयास है कि ऐसी मनुष्य गति मिली है तभी उसमें शीघ्र से शीघ्र सम्यक तो पाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे तपश्चरणादि की। अर्थ, हे भव्य जीव, आ मनुष्य गति मां ज तपनु आचरण होय छे, आ मनुष्य गति मां ज समस्त महाव्रत होय छे, आ मनुष्य गति मां ज धर्म शुक्ल ध्यान होय छे, तथा आ मनुष्य गति मां ज निर्वाण अर्थात मोक्षनी प्राप्ति होय छे। जब ये बात आती है तो लोग, अरे ये तो पंचम काल है ना, अब कहाँ मोक्ष होने वाला है, तो पंचम काल किस लिए है मिला में, मौज मस्ती करने के लिए, अभी मोक्ष तो है ही नहीं है तो क्यों उसके पीछे रखड़े। मोक्ष नहीं हो सकता है परंतु इस पंचम काल में छठे सातवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है ना, ये पुरुषों की अपेक्षा बताए यहाँ पर, और स्त्रियों में भी पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है। तो कहते हैं कि ये मनुष्य गति में ही ये बातें होती है, अन्य गतियों में नहीं, इसलिए ये बात यहाँ दोबारा मनुष्य गति की निकाली। आगे पढ़ेंगे,
पेज नंबर 15 से चालू करते हैं। देखो यहाँ चार बातें बताई ना, जो इसमें ओरिजिनली क्या नाम है गाथा में ही बताई है। एक तो तप जो होता है वो मनुष्य गति में ही होता है, महाव्रत जो होते हैं वह भी मनुष्य गति में ही होंगे, ये शुक्ल ध्यान है वह भी मनुष्य गति में है, और धर्म ध्यान कौन सी गति में होगा। हाँ बोलो बोलो, कौन सी गति में होगा, मैंने क्या पूछा, धर्म ध्यान कौन से गति के जीवों को होगा। डॉक्टर साहब आप बताएंगे, चारों गतियों में होगा, आप क्या कहते हैं, धर्म ध्यान किसको होता है ये तो नक्की करो। अरे हाँ भाई, इनको बोलने दो, धर्म ध्यान कौन से किसको कहते हैं, मैंने क्या पूछा था किसको होता है, चलो किस, हाँ कौन से गुणस्थान, तो चौथे चारों गतियों में चौथा है ना भाई, थोड़ा सा अपने को क्या बोलते हैं जरा विचार करें,
चौथे से कहाँ तक है धर्म ध्यान, चौथे हाँ सातवें तक, चौथे पांचवें छठे सातवें वाले को धर्म ध्यान है।
और शुक्ल ध्यान 8वें से 14 तक। हाँ,
ये मुख्यता
धर्म होता है और शुक्ल ध्यान की
धर्म ध्यान की मुख्यता भी मुनियों की होती है। हाँ, तो हाँ ऊपर तो गाथा में तो ध्यान कहा और यहाँ तो धर्म शुक्ल ध्यान वो मनुष्यों में या तप के कारण जो होता है उसकी बात यहाँ ली।
हाँ, अभी कहते हैं निर्वाण भी, चौथी बात कौन सी है? निर्वाण की चार बातें कौन सी देखी मैंने हमने? तप, महाव्रत, शुक्ल ध्यान और निर्वाण। ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा सा तो अपन उसको रिपीट करेंगे तो अपने को ये पढ़ने का थोड़ा सा तो फायदा होगा ना। अब कह रहे हैं देखो 15 पेज पर आते हैं, ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप आत्मानु भान करी ने तेमा लीन थमू ने इच्छा नी उत्पत्ति ज न थवी तेनु नाम तप छे। शू कीधु? आजे तो उपवास छे काले तो बराबर जमीस। हाँ, तपनो कहवाएंगे जो। अरे हम जब छोटे थे ना तब हमारे घर में ऐसा कोई प्रसंग आवे तो कल तो आज आपका उपवास है, कल तो आपना ये हो रहा है ना तो अपने को सबको उपवास पकड़ने, तो फिर मम्मी हमारे बोलती थी अरे काले उपवास है आज जरा वधारे खाई ले भाजी, काले भूख न लगे आज जरा वधारे खाई ले। ये होता था ना हमारे बारे में कह रहे। अच्छा होता है। अच्छा रात के टाइम खाने की बात मत कर, सुनो अभी देखो फिर से यहाँ तब किसको कहना है ये मैं बात बताना चाहता हूँ। ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप आत्मानु बान करीने, बान करीने याने अनुभव करीने, एनो ज्ञान करीने तेमा लीन थमू, ये मूल बात है। लीन हुआ नहीं है, खाली भोजन का त्याग किया ऐसा मानता है जो कि उसका है ही नहीं, उसका क्या त्याग करेगा? और जो तेरा है नहीं तो पारना और बिफोर पारना का खावे। अरे अरे, और आगे क्या बोलते हैं? इच्छा नी उत्पत्ति ज न थवी, एने तब केवल। ख्याल में आया? भारती रोटला छूटे ते काई खरेखर तप नथी। जो हूँ शुद्ध ज्ञान मूर्ति छू, देहती भिन्न ने राग थी पार छू, एवं सम्यक आत्मभान तो तीर इंच ने अने नारकी ने पन थाय छे, स्वर्गना देवो ने पन थाय छे, पन पछी विशेष चारित्र दशा तो मनुष्य गति माज थाय छे, तीर इंच मा पांचमो गुणस्थान होय पन त्या मुनि दशा न होय। देहनी क्रिया तो जड़ छे तेमा काई चारित्र के तप नथी। यानी देह की क्रिया कौन सी है? खाना नहीं खाया, ये देह की क्रिया है। वो क्या कह रहे हैं? ते काई चारित्र के तप नथी। केम के चारित्र जे छे यानी चारित्र गुण जो है वो किसमें है? शरीर में है कि आत्मा में है? तो उसका जो कोई परिणमन होगा वो आत्मा में होगा ना, इसलिए कह रहे हैं देहनी क्रिया तो जड़ छे तेमा काई चारित्र, एटले देहनी क्रिया मा तो काई चारित्र के तप नथी। अंदर रागनी वृत्ति उठे ते पन विकार छे, ते खरेखर तप के चारित्र नथी। यानी ये जो शुभ भाव हो रहा है कि मैं आज ये नहीं खाऊंगा, ये रस का त्याग है वगैरह वगैरह जो कुछ बातें चलती है ना, तो कह रहे हैं ये विकार छे ते पन तप के चारित्र नथी, पन देहती ने राग थी पार चैतन्य स्वरूप नु, चैतन्य स्वभाव नु भान करीने तेमा विशेष लीनता थता वीतराग भाव थाय छे, तेनु नाम चारित्र अने तप छे। एवु चारित्र ने तप मनुष्य गति सिवाय बीजे होतु नथी, माटे हे जीव आवी दुर्लभता जानी ने तू आत्मानी आराधना कर, मनुष्यपनु पामी ने आवा रत्नत्रय धर्मनी आराधना करे, तेनु मनुष्यपनु सफल छे। समस्त महाव्रत मनुष्य बना माज होई छे। अहो महाव्रतधारी मुनिवरों ने रोम रोम में वैराग्य छवाई गयो होई छे। अंदर चिदानंद स्वरूप में लीन थईने घणी वितरागता थई गई छे। मनुष्यपनामां सम्यक दर्शन पूर्वकनी आवी मुनि दशा प्राप्त करवी तेज सफलता छे। विषय कषायमां वृद्धि अने उसमें अधिक इंटेन्सिव ग्रीडीनेस। विषय कषायमां पांच इंद्रियों के विषयों में उसमें रचे पचे रहना, कल आई थी ना बात लंपटी, वो ये वृद्धि यानी उसमें अधिक आसक्ति। क्या कहा, विषय कषाय में वृद्धि थई ने काल गुमावे ने आत्मानी दरकार न करे ते तो मनुष्य भय हारी जाए छे। क्या कह रहे, समझ में नहीं आया आपके कि विषय कषाय कौन सा है? चक्षु इंद्रिय का विषय कौन सा? कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखो, ये क्या है? मनुष्यपना हारी जवानी बात छे। एम के छे तेने मनुष्य भवनी दुर्लभता जानी नथी, वड़ी धर्म शुक्ल ध्यान तथा मुक्ति पण आ मनुष्य भव मां ज थाय छे। माटे मनुष्यपनामां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्मनी आराधना करवी तेज सफलता छे। जे जीव धर्मनी दरकार करतो नथी ने विषय कषायमां जीवने जीवन गुमावे छे ते जीव चिंतामणि जेवो मानव भव हरी जाय छे, ए वात अवे दृष्टांत थी कहे छे। इसको हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सू